आज का मौजू जैसा कि आप जानते
जी
हैं, कायम आले मोहम्मद के
सही
हवाले से हमें बात करनी है और अपने इस प्रोग्राम को मुतबर्रिक करना है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मौजूद नाज़रीन की खिदमत में और सहर आलमी टेलीविज़न की पूरी टीम की खिदमत में मुंजी आलम और कायम आले मोहम्मद की मुनासबत से तबरीक करता हूँ।
बहुत शुक्रिया।
और देखें कि जब हम कायम आले मोहम्मद में इस 14वें मासूम को देखते हैं और इमामत के 12वें सितारे को, जो कि आसमान नबूवत पर जैसे कि कल की रात तलू
जी
हुआ
जी
और उसने अपनी रोशनियों को यकीनन इस दुनिया में बखेरना शुरू कर दिया, हम देखते हैं कि ये सितारा जो है वो 15 शाबान 255 या 56 हिजरी को
जी जी
आसमान नबूवत पर इमामत के हवाले से तलू होता है।
बिल्कुल
फिर हम देखते हैं कि 260 हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसोज वाक़या पेश आता है और यहीं से हज़रत इमाम महदी का जो है वो गैबत सुगरा का दौरा शुरू होता है, जिसमें आप अपने 4 नाइबीन के ज़रिए से लोगों के साथ मुर्तबित थे, राबते में थे, अपने मसाइल लोग जो हैं इन नाइबीन के ज़रिए से इमाम की खिदमत में पेश करते थे और इन्हीं नाइबीन के ज़रिए से इमाम जो हैं वो जवाब देते थे और वो लोगों तक पहुँचता था।
बिल्कुल
अगर हम इस दौरे को देखें जिसको मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ रावियों ने और मुख्तलिफ हमारे उलमा और मराजी कराम ने ज़िक्र किया है, वो तकरीबन 329 हिजरी और एक रवायत के मुताबिक 330 हिजरी, यानी अगर हम इस पूरे दौरे को जो कि गैबत सुगरा का दौरा है अगर हम इसको अकाउंट करें तो वो तकरीबन 69 ईयर्स या 70 ईयर्स का बनता है।
सही
इसके अंदर हम देखते हैं कि इमाम के लिए वो मुश्किलात जो कि बाकी इमामों के लिए बज़ाहिर पेश आई थी ज़हूर की सूरत में या हाजिर होने की सूरत में या हजूर की सूरत में, हम देखते हैं इमाम उन तमाम मुश्किलात से थोड़े से मुबर्रा नज़र आते हैं। यकीनन इस दौर के अंदर शियान की मुश्किलें वो उसी तरह से बरकरार हैं जिस तरह के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में बरकरार थीं। हम देखते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम वाहिद वो इमाम हैं जो कि 28 बरस की उम्र में इस दुनिया से कूच फरमा जाते हैं। उसके बाद से इमामत का जो अलम है इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की रवायात जो हैं वो तारीख के अंदर जिक्र की गई हैं। बाज़ लोग कहते हैं क्योंकि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो है बाकायदा तौर पर बरमला तौर पर जो है वो अपने जानशीन के तौर पर मुलाकात लोगों से नहीं करवाई थी, क्योंकि उस दौर के वाक़यात अगर हम देखें तो तारीखी एतबार से जनाब मूसा के दौर के साथ बिल्कुल मुशाबियत रखते हैं। जिस तरह के तारीख ने जिक्र किया कि फिरौन ने तकरीबन 70,000 बच्चों का कत्ले आम किया था ताकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या रूनमा ना हो सके, मगर देखिए होता वही है जो खुदावंदे मुताल चाहता है। देखिए दरियाए नील बहाते हुए वो संदूक जनाबे फिरौन के महल तक लाता है, वहाँ से जनाबे मूसा जनाबे आसिया की आगोश में आते हैं। जनाबे आसिया की आगोश में आने के बाद आप वो जिस तरह से फिरौन जो है वो आता है हजरत जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम उसी तरह से इजहार करते हैं नफरत का, दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि तारीख ने थप्पड़ का लफ्ज़ जिक्र किया है कि वो रसीद किया जाता है फिरौन के चेहरे पर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश के वक्त अबू जहल के चेहरे पर रसीद किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे वाक़यात चलते चलते जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और तारीखी एतबार से जनाब हज़रत कायम और जनाब हज़रत इसहाक़ की नस्ल, यानी हज़रत इस्माईल की नस्ल और जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल के आखिरी दो शख्सियात, यानी जनाब इसहाक़ की नस्ल में से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बंदे मुताल जो है वो अर्शे बरी पर ले जाते हैं, और इसी तरह से जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से जनाबे हजरत कायम अलैहिस्सलाम को खुदा बंदे मुताल जो है अपनी हिकमत अमली के तहत ताकि आपकी एक तो जान को महफूज रखा जा सके और दूसरा ये था कि मसरियत वक्त के तहत आपको गैबत के पर्दे में डाल दिया जाए। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे सवाल हमारे सामने रूबरू होते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत सारी निशानियां इमाम के जहूर की आया हो चुकी हैं, तो मैं इस जगह पर यह कहना चाहूंगा कि खुदा बंदे मुताल ने कुरान में लफ्ज़ वक्त मालूम का लफ्ज़ जिक्र किया है। देखें कि खुदा बंदे मुताल के मालूम तक हम जैसे मजहूल नहीं पहुंच सकते।
साहब जी, आप वहीं से अपनी बात को जो है जारी रख सकते हैं।
देखें फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा इस दुनिया में वाकया होता है, चाहे वो मुस्लिम दुनिया के अंदर हो या मगरबी दुनिया के अंदर, फौरन ये कह दिया जाता है कि इमाम की निशानी पूरी होगी। देखें अगर हम तारीख के आईने में देखें तो हमें तारीख ये बताती है कि आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोगों पर किस कदर जुल्म व सितम हुए और किस तरह के हालात उस दौर में बपा थे। ہم ان کا اصلا ادراک نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ خدا بندے متعال یہ ایک خاص شخصیت ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کی اس دنیا میں وہی اہمیت ہے کہ اگر آپ کسی شاعر کی ربائی کو دیکھیں اور ربائی کا چوتھا مصرع ہو, باقی تین کی اہمیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے, اگر آپ چوتھے مصرے تک نہ پہنچے اور دقت نہ کریں تو یقیناً وہ ربائی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح سے قائم آل محمد کی شاعری جو کہ 14 نکات معصومین پر مشتمل ہے, اگر ہم 13 کی شخصیات کو دیکھیں یقیناً وہ باکمال ترین شخصیات تھیں, مگر اگر ہم 14ویں کی شخصیت کے حوالے سے نہیں پڑھیں گے, 14ویں کی نظم کے اندر 14ویں ردیف تک یا 14ویں مصرے تک اگر پہنچنے سے پہلے پہلے اگر ہم 13ویں تک یہ نظم جو ہے وہ قط کر دیں گے تو ہم 14ویں کی کبھی بھی اہمیت کو نہیں پہچان سکتے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے معرفت حاصل کرنی چاہیے. اب معرفت کے بہت سارے طریقے ہیں, بعض لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے, علماء عرفان ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی شخصیت کی کسی باکمال شخصیت کی معرفت حاصل کرے تو جتنی اس کے اندر طلب باقی ہوگی اتنی وہ اپنی معرفت تک پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ سارے کا سارا سفر اگر ہم دیکھیں تو طلب کا ہے,
بالکل
پیاس کا ہے, تشنگی کا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کو پہچانے تو جتنی زیادہ ہمارے اندر اپنے امام کی معرفت کے لیے تشنگی باقی ہوگی, پیاس باقی ہوگی, طلب باقی ہوگی. دیکھیں کہ جب انسان کو ایک پانی کا پیالہ جس کے لیے اسے بے انتہا کی تشنگی ہوتی ہے, یا کبھی آپ صحرا میں دیکھیے, تصور کریں صحرا کے اس شخص کو جو کہ آسمان کے تیور کو دیکھتے ہوئے اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے پانی کا سما پیدا کرتا ہے کہ اس جگہ سے مجھے پانی مل سکتا ہے, یا آج بارش ہوگی اس کے بعد مجھے پانی ملے گا. یعنی پہلے اس کی تشنگی بڑھتی ہے, اس کی پیاس بڑھتی ہے, اس کی طلب بڑھتی ہے. جیسے جیسے اس کی طلب بڑھتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے رستے میں نکل جاتا ہے, جیسے ہی وہ اپنی طلب کو پوری کرنے کے لیے اس رستے میں نکلتا ہے تو پھر اس کے لیے راہیں جو ہیں وہ کھلتی جاتی ہیں, بند رستے بھی کھلتے جاتے ہیں, آنکھوں کے اوپر پڑے پردے اس کے لیے اٹھتے جاتے ہیں. اسی طرح کل جب ہم مسجد میں شب بیداری کر رہے تھے اس جگہ پر آغا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ دعائے کمیل یقیناً اس کی بہت زیادہ معرفت ہے. دعائے کمیل کو اس وقت تک انسان سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ اس کے لیے اپنی طلب کو بڑھائے نہ,
بالکل
اس کی تشنگی کو بڑھائے نہ. دیکھیں ایک ہے, ایک دعا ہے ہمارے پاس, ہم نے اس کو لفظی صورت میں اپنی زبان کے اوپر جاری کر لیا, یقیناً ہم نہ اس کی تاثیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس کے اثرات اور ثمرات حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس شخصیت کی ثمرات حاصل کریں, یعنی قائم آل محمد سے ہم اپنے لیے کوئی ثمر حاصل کریں, تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زبانوں پر جھوٹ ہے پھر بھی ہم امام کا انتظار کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دہی دیتے ہیں اور امام کا انتظار کرتے ہیں. ہماری زبان کے ذریعے سے کلمات ادا ہوتے ہیں مگر ان کلمات کے اندر وہ صداقت نہیں ہے جو امام کے ظہور کو نزدیک کر سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے ہی کہتے ہیں, اس جگہ پر سبط جعفر صاحب نے بہت خوبصورت مکالمہ ذکر کیا ہے, وہ پہلے شکوہ بیان کرتے ہیں لوگوں کا امام کے ساتھ کہ امام آپ ظہور کیوں نہیں کرتے, کس طرح دنیا جو ہے ظلم و ستم سے بھر چکی ہے, کس طرح سے لوگوں کو قتل و غارت کیا جا رہا ہے اور ہر طرف قتل و غارت کری کا بازار گرم ہے. اس کے بعد امام جو ہے وہ جواب دیتے ہیں, امام جواب دیتے ہیں کہ کبھی تم نے مجھے بلانے کی کوشش ہی نہیں کی, کبھی تم نے مجھے اپنے میرے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش نہیں کی. آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی دنیا کا امتحان ہو تو ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں, مگر کائنات کا سب سے بڑا امتحان ہمارے روبرو ہے مگر آج تک ہم نے اس کی تیاری کرنے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ضروری نہیں سمجھتے, شاید اس لیے کہ ہم لکلکے زبانی تک محدود ہیں اور صرف یہی چاہتے ہیں امام کو زبانی حد تک پکاریں اور امام کا ظہور ہو جائے. اگر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو اس صحرا میں بسنے والے لوگ تھے یا دور دراز کے لوگ تھے وہ نشانیاں پہچانتے ہوئے اس جزیرے تک پہنچ چکے تھے, مگر جیسے ہی امام کا ظہور ہوا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے, تمام کے تمام آپ کے منکر ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا ہمارے ساتھ بھی نہ ہو, آج ہم لکلکائی زبانی کے ساتھ امام کو پکارتے ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب امام کا ظہور ہو ہم لوگ ہی امام کے مخالف ہو جائیں, کیونکہ ہمارا کردار اس کردار کے مطابق نہیں ہے. جب ہمارا کردار اس کردار کے مطابق نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کی بشارت دی گئی,
کیونکہ ہم اپنے مزاج کے حساب سے چاہ رہے ہیں.
جی, ہر چیز اپنے مزاج کے حساب سے,
نہ کہ ان کے مزاج کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالیں, یہ نہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں امام ویسے ہوں.
دیکھیں جیسے بچوں کی تربیت کا ایک مرحلہ ہے, जैसे हम बच्चों की तरबियत करते हैं, तरबियत के साथ साथ उसके इखलाक पर भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसकी जहनीत को बनाने की कोशिश करते हैं, और उसका वो जहन जो कि बच्चगी की सूरत में एक सफ़ेद पेपर की मानिंद होता है, हम उस वाइट पेपर को रंगने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ अकवाल के ज़रिए से, मुख्तलिफ अतवार के ज़रिए से, मुख्तलिफ इखलाकी बुराइयों के ज़रिए से और अच्छाइयों के ज़रिए से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा अपने घर में सीखता है। वालदैन के अंदर अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं और बुराइयाँ भी पाई जाती हैं। जब तक वो बच्चा अपने वालदैन की अच्छाइयों को देखता है तो उनकी पैरवी करने की कोशिश करता है, और अगर साथ साथ उनकी बुराइयों को देखता है तो उसकी भी पैरवी करने की कोशिश करता है। अब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम या कायम आले मोहम्मद के जब हम जहूर के हवाले से बात करते हैं तो इसके लिए बेहतरीन मिसाल ये दी जा सकती है कि एक आप क्लास लगाएं, क्लास के अंदर तमाम बच्चों को कहें कि आप एक मज़मून लिखें, मज़मून लिखने के बाद उस्ताद उस मज़मून को चेक करें, मज़मून को चेक करने के बाद उस्ताद हर बच्चे को वो कापी वापस करता है और कहता ये है कि जिसके जितनी गलतियाँ हैं वो आगे आके अपनी गलतियों को पुकारे। अब जैसे वो अपनी गलतियों को पुकारना शुरू करता है, उस्ताद एक छड़ी उठाता है, बच्चों को उनकी गलतियों के मुताबिक सजा देने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उस्ताद एक ऐसे बच्चे तक पहुंचता है कि वो थर थर कांपता है, उसके हाथ से वो कापी गिर जाती है, उस्ताद उस कापी के गिरने की वजह पूछता है कि तुम्हारे ऊपर ये थरथराहट क्यों और ये घबराहट क्यों तारी हुई, तो वो आगे से बच्चा जवाब देता है, उस्ताद मेरा तो सारा गलत है। यानी ये कल की रात जो गुजरी है, नीमाए शाबान की रात जो गुजरी है, जिसे हमने मस्जिदों के अंदर गुजारा है, खुदा की बारगाह में हम इल्तजा कर रहे थे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे, यकीनन हमें उस बच्चे की मानी उस्ताद से, उस्ताद मेरा तो सारा गलत है, मुझे माफ़ कर दीजिए।
बिल्कुल
इसी तरह से हमें खुदावंदे मुताल की बारगाह में भी यही अर्ज करना चाहिए, ए खुदावंदे मुताल हमारी ज़िंदगी तो गुनाहों से भरी हुई है, इश्तबाहत से भरी हुई है, तो लिहाजा आप भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हमारी तरबियत जो है इखलाक़े मोहम्मदी के तहत हो जाएगी, उस वक़्त हम कायम आले मोहम्मद के ज़हूर के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करेंगे और तैयार होंगे भी इंशाल्लाह।
जी डॉक्टर साहब, बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी।
देखें फिर हम देखते हैं कि जब इमाम की विलादत होती है, क्योंकि इमाम के मैंने जिस तरह के अपने पहले हिस्से में बयान किया कि इमाम के हालात बिल्कुल जनाब मूसा के दौर के हालात के तरह थे कि इमाम की बकायदा तौर पर पहचान आपके शियान के साथ नहीं करवाई गई थी, उस दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवाल उठ रहे थे। बाज़ लोगों का नज़रिया ये था, शियों के अंदर काफ़ी ग्रुपबंदी हो चुकी थी, बाज़ लोग ये समझते थे कि इमाम का बेटा ही कोई नहीं है,
यानी उनके जो पैरोकार हैं,
जी पैरोकार, जी जी बिल्कुल, हम इधर पैरोकार मुराद ले रहे हैं, और जो चाहने वाले थे इमाम के, उनके जहनों में ये सवाल उठ रहे थे, या तो इमाम का बेटा नहीं है, अगर इमाम का बेटा था तब वो वफात पा चुका है, या बाज़ लोगों के जहन में ये था कि इमाम मोहम्मद तकी और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद जो है उनके अंदर इमामत चलेगी, और बाज़ लोग जो है उसे जाफर कज़ाब के साथ मुंसलिक कर रहे थे,
क्योंकि नमाज जनाजा भी जाफर कज़ाब ही पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन खुदा ने सबको दिखा दिया जब इमाम तशरीफ लाते हैं और अपने वालिद साहब की नमाज जनाजा को पढ़ाते, लेकिन फिर फौरन ही गायब हो जाते हैं।
देखें ये मसलहत वक्त है, क्योंकि उस वक़्त जो है हकूमती जसूस उस जनाजे के अंदर शामिल थे, उन लोगों का ख्याल ये था कि अगर इमाम आए तो हम उनको कत्ल कर दें। मसलियत वक्त के तहत इमाम आते हैं, अपने बाबा का जनाजा पढ़ाते हैं, क्योंकि मासूम मासूम का जनाजा पढ़ा सकता है, नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इमाम फौरन वहां से गायब हो जाते हैं, और उसके बाद कुछ निशानियां हैं इमामत की जो कि जाफर कज़ाब उन निशानियों को समझ ना पाया। वो इस तरह से थे कि कुम के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से तबरुकात इमाम की खिदमत में लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि इमाम का जानशीन कौन है, यानी वक्त का इमाम कौन है, क्योंकि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों के लिए एक पैगाम भिजवा दिया था कि मेरे बाद मेरा जो इमाम होगा वो ये बताएगा कि इस थैली के अंदर क्या है, इसके अंदर कितनी अशरफियाँ हैं और ये कहाँ से आई। तो इसी तरह जब हज़रत इमाम कायम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने हुजरे से बाहर लाते हैं, जब लोग देखते हैं एक 3 या 4 साल बच्चा जो है वो बाहर आता है और आकर कहता है कि चचा आपके हाथ में जो थैली है उसके अंदर जो है इतनी अशरफियां हैं, 200 के करीब अशरफियां हैं, सोने की अशरफियां हैं, और आप ये कुम से लेकर आए। ये सारी निशानियां बताने के बाद वो लोग जो हैं आपकी इमामत के कायल हो जाते हैं, और उसके बाद दोबारा से इमाम जो है वो गायब हो जाते हैं, और जाफर कज़ाब जो कि जिसने इमामत का झूठा दावा किया था उसके बाद तारीख में क्या हुआ उसके साथ वो भी तारीख ने बयान किया। क्योंकि फिर हम देखते हैं कि जब ये सारे वाकयात और ये सारे हालात चल रहे थे तो उस दौर में यानी 260 हिजरी से लेकर 329 हिजरी तक इमामत के साथ जो खलीफा वक्त जो हैं वो उस अपनी इमामत को आगे चला रहे थे या खिलाफत को आगे चला रहे थे।
सही।
اور شیعان پر یا امام کے چاہنے والوں پر یا اس دور کے مسلمانوں پر جو ہے وقت اسی طرح سے تنگ کیا جا رہا تھا، ان کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، ان پر سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں اور ان کو مختلف قسم کی اذیتیں کی جا رہی تھیں، کسی کو جو ہے وہ آرے کے سریے سے چیر دیا جاتا تھا، کسی کی زبان کاٹ دی جاتی تھی اور کسی کو کھجور کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسی طرح کے واقعات مختلف علاقوں میں، مختلف منطقوں میں، مسلم ممالک میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ساری کے سارے واقعات جو ہیں اس سلسلے کی کڑی ہیں۔
بالکل
دیکھیں، اگر ہم کڑیوں کو ملاتے جائیں تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ نبٹتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مثلا امام کے حرم میں گیا، یا کل کی رات میں نے، گزشتہ شب جو ہے میں نے وہ دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو نیت تھی وہ خالص نہیں تھی، یعنی اس جگہ پر بھی طلب جو تھی وہ طلب کافی نہیں تھی، اس کی
شدت نہیں تھی اس میں۔
یعنی جب تک انسان کے اندر طلب اور پیاس اور تشنگی زیادہ نہیں ہوگی تو اس کے تمام مسائل اسی طرح اٹکے رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو، ہمیں چاہیے کہ آئمہ کی زندگیوں کی معرفت کریں کہ امام نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ سادہ زندگی حضرت امام علی علیہ السلام سے لے کر اگر ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک آتے ہیں تو کتنی سادہ زندگی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سادہ ہے دیکھیں، باکمال شخصیات کی باکمال آخری نشانی جو کہ قائم حجت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ فخر ہے ہم تمام کے لیے کہ کل حضرت عیسیٰ جناب حضرت قائم کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
بالکل
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں تمام کے اکابرین نے جو ہیں حضرت امام زمان علیہ السلام یا حضرت قائم کے حوالے سے، جناب حجت کے حوالے سے، یا منجی بشری انسانیت کے لیے جو ہے بے لا تعداد کتابیں لکھی ہیں، اور ہر ایک نے اس کتاب کے اندر اگر ہم دیکھیں ہندو مذہب کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص آئے گا جو ہندو مت کو یا ہندو مذہب کو ظلم و ستم سے نجات دے گا۔ اگر ہم عیسائیت میں آتے ہیں تو عیسائیت میں بھی ہمیں یہی افکار ملتے ہیں، اور اس کے بعد یہودیت میں بھی یہی افکار ملتے ہیں، یعنی کوئی مذہب ایسا نہیں جو مہدی کی مہدویت کا انکار کر سکے۔
بالکل، ادیان الہی جتنے بھی ہیں وہ مہدی موعود کو مانتے ہیں اور منتظر ہیں۔
جی بالکل،
بہت شکریہ۔
اسد بھائی دو سوال آئے، دونوں شامل کرنا چاہوں گی۔ احمد رمیز صاحب پوچھتے ہیں، حضرت امام مہدی کی غیبت میں مومنین بالخصوص جوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس پہ ضرور روشنی ڈالی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس کرن شہزادی، اکثر اس پروگرام ہم کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے امام ظہور نہیں کر رہے، تو کیا پوچھنے آیا اس بات میں حقیقت ہے نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی جناب،
دیکھیں جس طرح کہ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے امام کا ظہور جو ہے ہم سے دور ہوتا چلا، نہ فقط امام کا ظہور بلکہ ہم سے اپنے ہی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔
صحیح،
کیونکہ اگر آپ دعائے کمیل کو تھوڑا سا دقت کے ساتھ پڑھیں تو اس میں امام فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر سے نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور قائم آل محمد کے ظہور سے بڑھ کے تو کوئی نعمت نہیں ہو سکتی جو کہ انسان سے ہٹا لی گئی ہے۔ پھر کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان سے رزق کھینچ لیا جاتا ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے اوپر مصیبتیں اور بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے زبان سے، یا اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء کے ساتھ کسی کو کسی قسم کی اذیت نہ دیں۔ بعض دفعہ یہ اذیت نہیں ہے کہ ہم مثلا کوئی ہم سے گفتگو کرتا ہے اگر ہم اس کا جواب نہ دیں تو یہ بھی اس کے لیے اذیت ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انسان کو خاموش رہنا پڑتا ہے، یعنی بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر انسان کو مختلف قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے ایسے الفاظ سننے پڑتے ہیں جو کہ انسان نے اپنی زندگی میں کبھی نہ سنے ہوں۔ اس جگہ پر انسان کو سکوت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ائمہ طاہر علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ اگر ہم حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر امام نے جو ہے خاموشی اختیار کی۔
اب بڑا سخت ہو، سوری، اکثر لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، جو مد مقابل اس نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ انسان جل کے رہ گیا، اب چپ نہیں ہو سکتا، وہاں کیا اس اپنے سے
کہتے ہیں صبر و شکیب بھائی،
کیا سمجھائے کہ انسان صبر آئے؟
دیکھیں انسان اس جگہ پر، میں نے ایک اس جگہ پر پروگرام کیا تھا کہ انسان پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا پائے، اس جگہ پر میں نے بہت سارے راہ حل اس کے لیے بیان کیے تھے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کے الفاظ کو برداشت کرنے کے حوالے سے۔
یہ وہ باعث بنے گا امام زمانہ کے ظہور کے لیے،
ظہور کے لیے جب ہمارے اندر صبر آئے گا، जब हमारे अंदर इस्तकामत आएगी, जब हमारे अंदर सदाकत आएगी, जब हमारे अंदर अमानत आएगी, यानी अगर कोई हमारे पास कोई अमानत आकर छोड़ के जाता है, हमारे घर में रख के जाता है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी इमानत की जो है ईमानदारी के साथ जो है पूरी पूरी हिफाजत करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौाक़े हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो इंसान के जहन में पैदा होने वाले ख्यालात की वजह से इंसान अंजाम देता है। इंसान को चाहिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखे, बंदगी खुदा में मसरूफ़ रखे। यानी इस जगह पर भी वही चीज़, यानी तिशनगी, आपकी प्यास और आपकी तलब जो है आपको इन चीज़ों से हटाकर खुदा के नज़दीक ले जाती है।
ख़ास तौर से नौजवानी का जो आलम होता है उसमें ज़्यादा ज़रूरत है।
देखिए, नौजवानी के आलम के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करना चाहूँ तो इसके लिए बहुत तुलानी गुफ्तगू है। इसमें कुछ वालदेन की जिम्मेदारियां आती हैं कि बरवक्त शादी ना करना, जिसकी वजह से नौजवान जो हैं मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों में मुबतला हो जाते हैं। और तीसरा ये कि हम लोग तसव्वुर ये करते हैं कि अगर बच्चे की शादी जो है नौ उम्री में कर दी गई, नौजवानी में कर दी गई, तो वो अपने रिस्क का इंतजाम कहाँ से करेगा। यानी इस जगह पर हम खुदा से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत के दौर में हमारे नौजवानों पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आयद होती है वो ये है कि वो अपने हमसाओं का ख्याल रखें, हमसाए के दुख दर्द में शरीक हों। क्योंकि आज के इस तेज़ तराज दौर के अंदर इंसान के पास टाइम नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है उसके पड़ोस में कौन रहता है, उसका हमसाया कौन है, उसने कुछ खाया है या नहीं खाया। हमें सिर्फ आज के दौर में अपनी गजा के हवाले से, अपनी खुराक के हवाले से हमें आशनाई होती है, जबकि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे बहन भाइयों की क्या सूरत हाल है। और इसके अलावा सबसे चीज़ ज़रूरी ये है कि अगर हम खुम्स देना चाहते हैं सबसे पहले अपने ख़ानदान में देखें गरीब कौन है, इसका हकदार कौन है। क्योंकि जब हम उस खुम्स को उठा के बाहर ले जाते हैं तो हमारे ख़ानदान के अंदर मौजूद उसका हकदार जो है वो रह जाता है, इसका भी गुनाह हमारे सर होगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें हमारे नौजवान जो हैं एक ज़्यादा से ज़्यादा दुआ फ़र्ज का पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें। दूसरा ये है कि अहद कर लें कि हमेशा सच बोलना है, ईमानदार बनना है, और खुदा बंदे मुताल की अमानत में किसी किस्म की खयानत नहीं करनी,
और अपने आप को गुनाहों की आलूदगी से बचाना है। बहुत
ये जब हम देखें, ये जो हमने कहा है कि हम खुदा बंदे मुताल के करीब होना चाहते हैं, अगर हम खुदा चाहते हैं तो इन चीज़ों से बचना होगा। जब हम खुदा बंदे मुताल के करीब होंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे, हमारे अंदर आपको बहुत सारे असरात दिखाई देंगे। हम जिस तरह कहते हैं ना, मैं फलां बुजुर्ग के पास गया, उसने मेरे लिए दुआ की, वो मुस्तजाबुल दुआ हो गई। क्यों? उसकी तलब और तिशनगी ज़्यादा थी खुदा को पाने की, आइमा की मार्फत को पाने की, और कायम आले मोहम्मद के जहूर के लिए अपने आप को तैयार करने की तिशनगी और प्यास उसके अंदर ज़्यादा थी। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर तलब पैदा करें, तिशनगी पैदा करें, प्यास पैदा करें, ताकि हम उन सम्राट तक पहुँच सकें जिसका आले मोहम्मद ने और खुदा बंदे मुताल ने हमारे साथ वादा किया।
इंशाल्लाह हमारे नौजवान इन बातों पर अमल करेंगे।